शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनुघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वराहपीडं नटवरवपुः करुणयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयुतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो जय राधारमण हरि बोल जय राधारमण हरि बोल जय राधारमण हरि बोल
जय राधारमण हरि बोल
जय राधारमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि
जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा
राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा
राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण
हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण
हरि
बो जय जय राधा
राधा
जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि
बो जय राधा
रमण हरि बो जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा
राधा रमण हरि बो
जय राधा रमण हरि बो
जय 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 जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि
बो जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो
जय जय राधा रमण हरि बो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, समादरणीय झुंझुनवाला जी, जयपुरिया जी, जाजू जी, खेतान जी, भाटिया जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान की जो दिव्य कथा है महाराष्ट्र लीला भगवान की अत्यधिक अंतरंग लीला है। और जैसे आपको बार बार ये बात भागवत के माध्यम से सुनाई जा रही है, जब तक पांच भौतिक स्थूल शरीर का अध्यास बना हुआ है, तब तक इस लीला को समझना कठिन कार्य है। प्रवेश तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अगर जीवन में कृष्ण प्रेम विद्यमान है तो इस लीला का रस जरूर आता है, आनंद जरूर आता है। हम लोग अपने प्रसंग में प्रवेश करें। गोपियों को भगवान ने अपने हृदय की बात बता दी कि वो अंतर्धान क्यों हुए थे। गर्व निवारण के और भी उपाय हो सकते थे। भगवान तो संकल्प करें तो भी भक्त का गर्व दूर हो जाता है, भगवान अंतर्धान होंगे तभी गर्व दूर होगा ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन भगवान भक्त की किसी भी क्रिया के लिए अपनी एक नई लीला का निर्माण कर लेते, और भगवान कृष्ण की एक लीला में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गोपियों का गर्व दूर हुआ और गोपियों के हृदय में वास्तविक जो कृष्ण प्रेम था, जो गोपी गीत के रूप में छिपा हुआ था, गोपी कहते ही उसके हैं जो अपने कृष्ण प्रेम को छिपा के रखे, गोपायति, गोपु रक्षणे धातु है, जो अपने प्रेम को सुरक्षित रखे, छिपा के रखे, उसका नाम है, क्या नाम उसका, गोपी। उसका नाम गोपी। आजकल तो थोड़ा कुछ भाव आ जाए तो लोग प्रदर्शन में लग जाते हैं, प्रदर्शन। एक घटना मेरे को याद आ गई। इंदौर में एक कोई सत्संग सम्मेलन था, प्रारंभ में संकीर्तन होता था। एक व्यक्ति थे, बड़े भाव से संकीर्तन कराते थे खड़े होके, और बड़ा भाव आता था, स्वाभाविक था भगवान के कीर्तन में। लेकिन उस दिन बहुत बड़ा सम्मेलन था, शायद समापन का दिन था, बहुत लोग आए हुए थे, कुछ अलग से व्यवस्था की गई थी। वो खड़े होके जब संकीर्तन कराए और हाथ उठा उठा के नाचने लग गए तो अचानक वो बेहोश होके गिर पड़े। तो लोगों को लगा बहुत, और स्वाभाविक है जो इतने प्रेम में नाच रहा है तो कोई विशेष भाव आ गया होगा। थोड़ी देर बाद वो ठीक हुए। लोगों ने पूछा, आपको क्या भाव आया था? देखो कितने ईमानदार थे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कह देता, मैं तो भावावेश में चला गया था, भगवान का दर्शन हुआ, समाधि लगी। वो बोले, मैं तो सामान्य कीर्तन में आनंद ले रहा था, लेकिन जो वायर लगा है ना, ये कहीं से खुला हुआ था, वो करंट मेरे हाथ में लग गया था। ये ईमानदारी, वो करंट लगने से मैं गिर पड़ा था। ठीक है, संकीर्तन में मेरे को रस आ रहा था, लेकिन इतना रस नहीं आ रहा था कि मैं भाव में डूब जाता या समाधि में चला जाता। ये है गोपी, इसका नाम गोपी। अब वो सही था, भाव था जो था, लेकिन उन्होंने उस बात को बिल्कुल अलग रूप दे दिया कि आप ये मत मानो कि मेरे जीवन में बहुत भाव आ गया था। वो बात सही थी, वायर खोला हुआ था। वो आजकल तो इंडिया में आप जानते ईश्वर ही चला रहा है। वो एक संत कहते थे कि ईश्वर की व्यवस्था देखना हो तो भारत आना ही होगा। और कहीं ईश्वर की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पग पग पे ईश्वर के नाम लिए बिना आगे गाड़ी नहीं चलती। ट्रैफिक की हालत, बिजली की हालत, हमारे देश के कर्णधारों की हालत और हमारे कुछ बाबा जियों की भी हालत, तो वो ईश्वर है और ईश्वर आनंद लेता है इन लीलाओं को देख करके। तो कहने का अर्थ क्या है, गोपी माने जो अपने को छिपा के रखे, गोपायति कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम को छिपाती है उसका नाम गोपी। वो गोपियों को भगवान ने कहा, उनका हृदय का प्रेम को प्रकट किया और भगवान ने जब स्पष्ट बता दिया कि गोपियों मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूं, ये भगवान की सच्चाई है। जो निश्चल प्रेम भगवान से करे, और भगवान को क्या, एक संत की कोई निश्चल सेवा करे, संत का हृदय ऐसा होता है कि वो उसका हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद ने लिख दिया, तस्मिस तज्जने भेदा भावात, ईश्वर का अनुभव करना है तो किसी ईश्वर प्राप्त संत के साथ रह जाओ तो ईश्वर कैसा होता है इसका पता आपको लग जाएगा। महाराज तो आमे प्रसंग पर गोपियों ने जब ये समझ लिया कि भगवान हमारे लिए छिपे थे और इतने इनके हृदय में भावना है, इत्थम भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर विरहजम तापम तदंगोपचिताशिषः त्रत्रारभत गोविंदो रासक क्रीडा मनुव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रेतैः अन्योन्या बद्ध बाहुभिः। प्रसन्न हो गई गोपियाँ, जहुह विरहजम तापम, संताप दूर हो गया। और कितनी सरल हैं, जैसे बच्चे को आप डांट दो तो रोने लग जाए, और फिर उसको थोड़ा अच्छे से प्रेम से बोल दो, लड्डू दे दो तो हंसने लग जाए। अभी गोपियां झगड़ा कर रही थीं, अभी श्री कृष्ण को बड़े बड़े प्रश्न पूछ रही थी, आप कैसे छिप गए, क्यों छिप गए। बालवत, और यही भक्ति की विशेषता है, जो बालवत हो जाए ना वही संत है, वही भक्त है, और वही सरलता है, वही सहजता है। मुंगेर में मैं एक 1.5 साल पहले भागवत कर रहा था, जो योग के लिए एक महाराज आधिकारिक स्थान है योग के लिए, मुंगेर विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद जी महाराज के, उनके जो उत्तराधिकारी हैं स्वामी श्री निरंजनानंद जी महाराज, नंदोत्सव के दिन महाराज जो जब बधाई गाई, मैंने गाई तो खड़े होकर नाचने लग गए। तो मेरे को लगा वो बड़े गंभीर हैं, लोग उनसे बहुत डरते हैं, और नाचने लगे इतने सरल, इतने सरल। अच्छा वो नाचते तो नाचते 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 मेरे पास आ गए और मेरे को मंच से उठा लिया। मैंने कहा महाराज मेरे को पहली बात तो नाचना आता नहीं और मैं ब्यास आसन से कभी उठा नहीं, तो क्या बोलते हैं, बोले अभी तो नाचने ही सिखाया, आगे तुमको भरतनाट्यम सिखाएंगे हम। इतने सरल, और जानते हैं इतनी योग्यता है, 10 भाषाओं के जानकार, 50 वर्ष की एज है अभी, प्लेन चलाना वो जानते हैं, 10 भाषा वो जानते हैं, एक विलक्षण व्यक्ति है। और नासा ने शायद ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है, उन्हीं 3 महापुरुषों के नाम से उपग्रह छोड़ा है, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी और स्वामी निरंजनानंद जी, इन 3 के नाम से नासा ने उपग्रह छोड़ा हुआ, वो निरंजनानंद जी। इतने बड़े विद्वान, इतने योग्य महापुरुष, और वो जब भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव आया तो स्वयं नाचे, जब वो नाचे तो सारे महात्मा खड़े हो गए, व्यासासन से मेरे को खड़ा कर लिया, जितने सेवक थे वहां वो बोले महाराज स्वामी जी का ये रूप तो पहली बार ही दिखाया हमने। इतने सरल होते संत, वही है सहज, सहज। गोपियों को देखो, अभी इतनी नाराज थी, श्री कृष्ण से कुछ प्रश्नोत्तर कर रही थी, श्री कृष्ण के हृदय की बात को समझ गई तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तुरंत हृदय में जिसके कुछ न रहे वो संत, वो भक्त। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब महाराज करें, बोले हाँ तो तैयार। भगवान कृष्ण और किशोरी जी श्री राधा रानी उस विशाल जमुना पुलिन के प्रांगण में, जहाँ पूर्णिमा की चंद्रमा के चांदनी का प्रकाश है, शीतल मंद सुगंध हवा है, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, भगवान कृष्ण और श्री किशोरी जी मध्य में खड़े होकर के नृत्य प्रारंभ किया। और ये नृत्य कौन कर रहे हैं, कितने कुशल हैं नृत्य में, जो काली नाग के फण पर नाच चुके। आप कल्पना कर सकते हो कितना सुंदर नृत्य करते होंगे। काली नाग के फण पर कितना भी कुशल नर्तक हो आज भी विश्व में, लेकिन काली नाग के फण पे तो कोई नहीं नाच सकता, वो तो कृष्ण ही नाच सकते। और वो भी इतनी देर तक, वो जब नृत्य करें क्या कहना है। किशोरी जी और ठाकुर जी का जहां नृत्य प्रारंभ हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। क्या दिव्य लीला थी। आसमान भरा हुआ था, आकाश भरा हुआ था देवताओं के विमानों से। स्वर्ग छोड़ करके देवता वृंदावन के आसमान में दिव्य लीला देख रहे। फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंधवी बजने लग गई। महाराज देवताओं के हृदय में फिर लालसा हो रही है, हमने ऐसा सत्कर्म क्यों नहीं किया कि देवता न बन करके गोपी बन गए होते। आज हम भी प्रवेश नहीं है, ये सामान्य लीला नहीं थी कि कोई भी प्रवेश कर जाए, दर्शन कर सकते, प्रवेश नहीं। भगवान शंकर को भी अगर प्रवेश करने की इच्छा हुई तो शिव रूप में प्रवेश वो भी नहीं कर सके, क्या बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। गोपी बनना, भले वो एक्चुअल में गोपी नहीं बने, ओढ़नी ओढ़ लिए, लेकिन ओढ़नी तो ओढ़नी पड़ी। गोपेश्वर महादेव उनका नाम पड़ गया, तो वो दिव्य लीला। अब महाराज मध्य में भगवान कृष्ण और किशोरी जी, आप अगर ध्यान से भी, और किसी का अगर जो ध्यान लगता है ना, वो इस रस की अनुभूति कर सकता है। उनके श्री चरण कमल के जैसे श्री चरण, इतना सुकोमल शरीर, और वो बालुका में पावन पुलिन, सुकोमल पुलिन, उसमें ताता थी ताता थी ताता थी। जहां नृत्य प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े भक्तों की समाधि लग गई और योगियों की समाधि टूट गई। ऐसा नृत्य था भगवान का। और वहां जहां नृत्य प्रारंभ हुआ तो गोपियां मंडलाकार हो गई, ठाकुर जी के चारों तरफ हजारों की संख्या में गोपी हैं। एक मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, मध्य में ठाकुर जी और किशोरी जी नृत्य कर रहे हैं, चारों तरफ मंडलाकार गोपियां नृत्य कर रही। अब आप भाव राज्य में देखें, जहां हजारों की संख्या में गोपियां हैं, कितनी दिव्य लीला होगी। जहां इतना सुंदर प्रकृति सहयोग कर रही है, और इतना ही नहीं, एक बात और लिखी है, चंद्रमा भी मोहित हो गया, चंद्रमा चलना भूल गया। और कितने दिन तक रुका रहा, बोले 6 महीने तक रुका रहा, 6 महीने। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में सूर्य भगवान 1 महीना रुक गए थे, भूल गए थे। और यहाँ रासलीला में, क्योंकि वो जन्मोत्सव वात्सल्य रस की लीला थी, और रासलीला अंतिम रस मधुर रस की लीला है, चंद्रमा रुक गया 6 महीना। इसलिए 6 महीने की रात्रि, कई वक्ता बोलते हैं रात्रि 6 महीने की हो गई, सुन करके लगता है कि वक्ता लोग अपने से बना लेते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जब चंद्रमा चला नहीं, काल की गति रुक गई, 6 महीने का समय उसमें रास हो रहा है, 6 महीने। सभी रात्रियां शामिल हैं अधिष्ठात्री देवियों के रूप में। और महाराज जगुर गंधर्व पतया, अब श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियां तो केवल नृत्य कर रही हैं, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धुंधवी बजा रहे हैं। अब बोले नीचे से क्या हो रहा है, गोपियों के पैरों में जो नूपुर हैं, घुंघरू हैं, उनकी आवाज साथ में मिल रही है। विलक्षण, जैसे साम वेद साक्षात प्रकट हो करके अपने स्वरों में गा रहा हो, ऐसे विलक्षण ध्वनि निकल रही है, साम वेद का जैसे गान हो रहा हो, वो दिव्य लीला। नारद नाचते नाचते गोपियां थक रही हैं और धीरे धीरे श्री कृष्ण का दर्शन कर रही, लेकिन प्रेम कहते उसी को जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे, इसकी कोई सीमा तो होती नहीं, अंत तो होता नहीं। गोपियों के मन में एक बात अभिलाषा का और उदय हुआ, क्या, श्याम सुंदर जैसे किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ करते तो कितना आनंद आता, कितना रस आता। अंतर्यामी है प्रभु, वह तो गोपियों की आत्मा के रूप में भी विराजमान है। भगवान कृष्ण और राधा रानी एक रूप में तो मध्य में खड़े रहे, भगवान कृष्ण ने अपने रूपों को बढ़ाया, इसलिए योगेश्वरेश्वर शब्द का प्रयोग। योगी में वो सामर्थ होती है कि एक समय में अनेक शरीर प्रकट कर सकता है। पुराने सिद्ध महात्माओं में ये बात देखी गई, अनेक रूप में कई जगह वो देखे जाते थे। तो योगेश्वरेश्वर माने एक समय में जितने चाहे उतने शरीर प्रकट कर दे, उन योगियों के भी ईश्वर है। तो जब योगी प्रकट कर सकता है तो श्री कृष्ण प्रकट कर दे, इसमें आश्चर्य क्या है। भगवान कृष्ण लेकिन हैं बड़े नटखट, हैं बड़े लीलाधारी। सभी गोपियां चाहती हैं लेकिन क्या करते हैं, बोले दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण हो गए। सभी चाहती तो सभी के मध्य में एक एक हो जाना चाहिए, नहीं। तासाम मध्य द्वयोर द्वयो, ये दूसरा कम प्रारंभ हुआ रासलीला का। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण। अब हुआ क्या कि श्री कृष्ण का एक हाथ एक गोपी के हाथ में और दूसरा हाथ दूसरी गोपी के हाथ में। तो गोपियों का एक हाथ तो श्री कृष्ण के हाथ में और दूसरा हाथ गोपी के हाथ में, क्योंकि दो दो गोपियों के मध्य में एक एक कृष्ण है। आनंद और आने लग गया। बहुत देर तक इस क्रम से भी रास हुआ, रासलीला हुई, नृत्य हुआ और वो सुंदर वातावरण बना हुआ है। लेकिन प्रेम और बढ़ा गोपियों का। गोपियों को लगा कि दोनों हाथ अगर श्री कृष्ण के हाथ में होते तो कितना रस आता, कितना आनंद आता। ओ रास बिहारी भगवान भक्तवांछा कल्पतरु, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता उसकी प्रत्येक इच्छा को जो पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे रास बिहारी भगवान जितनी गोपियां थी उतने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जितनी गोपियां, हजारों गोपियां, तो हजारों श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब विलक्षण दृश्य हुआ। क्यों? गोपियां गौर वर्ण की, श्याम सुंदर श्याम वर्ण के। तो एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। अब महाराज गोपियां लग रही हैं जैसे बिजली चमक रही हो और श्री कृष्ण लग रहे हैं जैसे नीलमणि चमक रही हो। हाँ, एक नीले हैं एक गौर हैं। अब महाराज तो बोले उपमा क्या दी सुखदेव जी महाराज ने, अवधूत सुखदेव जी महाराज वो ये वर्णन कर रहे। बोले राजन ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के मध्य में बिजली चमक रही हो और बादल गर्जना कर रहे हो, क्योंकि धुंध भी बज रही है ना। हाँ, बादल गर्जना कर रहे हो, बिजली चमक रही हो, ऐसा सुंदर वातावरण बना हुआ था। अब महाराज जो गोपियां जब नाच रही हैं तो बड़ी प्रसन्न है। नाचते नाचते कोई श्री कृष्ण का कंधा पकड़ लेती है, कोई श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है, कोई कमर पकड़ लेती है और भगवान कृष्ण उनको शाबाशी देते हैं। वाह, बीच बीच में गाने लग जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कितना सुंदर नृत्य है तुम्हारा, कितना सुंदर गान है तुम्हारा। क्या श्री कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर था क्या गोपियों का? नहीं था, लेकिन ये ठाकुर का स्वभाव है। कार्य स्वयं करते हैं और यश अपने भक्त को देते, अपने आश्रित को देते। तुमने कितना सुंदर नृत्य किया, कितना सुंदर गान किया। अब महाराज गोपियां नाचते नाचते, सुखदेव जी महाराज कहते जानते हो श्री कृष्ण की भावना इस समय कैसी थी? रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान कृष्ण नृत्य तो कर रहे हैं लेकिन कैसी भावना है? बोले जैसे एक बालक हो, महल के मध्य में खड़ा हो और महल अनेक प्रकार की मणियों से बना हुआ हो। तो बालक की प्रतिबिंब, एक बालक के प्रतिबिंब अनेक रूप में दिखाई देते। या आप किसी कांच के मंदिर में अगर चले जाएं तो आप अकेले होंगे लेकिन आपकी प्रतिबिंब अनेक दिखाई देंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन बिंब तो हैं श्री कृष्ण और प्रतिबिंब हैं गोपियां। जैसे वो एक नासमझ बालक एक कांच के मंदिर में या मणि के मंदिर के मध्य में खड़ा होकर के अपने प्रतिबिंब के साथ देख करके नृत्य करता है, ऐसे आज श्री कृष्ण अपने आत्मस्वरूप गोपियां हैं। क्या श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा के रूप में कौन है? गोपियों की आत्मा के रूप में गोपी हैं या कृष्ण है? कौन है? कृष्ण है। तो जैसे अपने ही प्रतिबिंब के साथ एक बालक नृत्य करता है, सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे श्री कृष्ण अपने आत्मा को अनेक रूप में लीला के लिए प्रकट कर देते हैं और नृत्य कर रहे हैं। उसका रस लेते, आनंद लेते हैं महाराज। तो सुखदेव जी महाराज जो लीला में, और फिर वही बात आ गई, आत्मा अनेक रूप में प्रकट होती है। कब? अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के। वही उदाहरण भी वही दिया है। एक आत्मा अनेक रूप में प्रकट होती है, प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंबवाद बोलते हैं। अवच्छिन्नवाद या आभासवाद कह लें, प्रतिबिंबवाद कह लें, अवच्छिन्नवाद माने अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बोल देते हैं, और प्रतिबिंबवाद में चिदाभास बोल देते हैं। वो शब्द का भेद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। तो जैसे एक ही सूर्य बर्तन के माध्यम से अनेक सूर्य दिखाई देने लग जाता है, ऐसे एक ही कृष्ण गोपियों का अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका है कि श्री कृष्ण उनके अंतःकरण रूपी दर्पण में अनेक रूप धारण किए हुए हैं और नृत्य कर रहे। तो एक आत्मा के रूप में जहां श्री कृष्ण प्रकट है, उन गोपियों के साथ रास विहार हो रहा है, नृत्य हो रहा है। अब आप उस लीला का रस इतने से ही समझ सकते हैं, उन श्री कृष्ण का दर्शन जिनको हो जाए, स्पर्श जिनको हो जाए, उनके शरीर की क्या दशा होती है। गर्गाचार्य जब नामकरण करने गए थे ना, भगवान कृष्ण का हस्त कमल उनके हाथ में आया और वो भूल गए क्या कहना क्या नहीं कहना। उनको नहीं बताना था कि भगवान है, उनको नहीं बताना था कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन सब कुछ बता दिया। क्यों? भगवान के स्पर्श का ये प्रभाव था कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। भगवान के दर्शन का ये प्रभाव था। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं रामायण में, को मैं चलूं कहां नहीं पूछा, भगवान का दर्शन के कल्पना करके। तो जिन गोपियों को दर्शन भी हो रहा है, स्पर्श भी हो रहा है, जिन गोपियों को श्री कृष्ण शाबाशी दे रहे हैं, उन गोपियों के आनंद के सागर की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना आनंद का सागर उमड़ रहा है वहां पर। सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित और जितने ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, वो जैसे भाव राज्य में सुखदेव जी महाराज बोलते जा रहे हैं, और जैसे चलचित्र चलता है ना, उनको दर्शन होता जा रहा है। सारे डूबे हुए, बोले इधर क्या हुआ। बोले महाराज, नृत्य करते करते श्री कृष्ण तो थके नहीं, बहुत समय तक नृत्य होता रहा, अनेक तरह से नृत्य होता रहा। अब वो उतना विस्तार में मैं नहीं सुनाऊंगा यहाँ जो लिखा है, क्योंकि थोड़ा साहित्यिक भाषा में है और आज का समाज वैसे भी थोड़ा कृष्ण भगवान के पीछे लगा रहता है। तो जिनको ज्यादा जिज्ञासा है या रुचि है, वो ये भागवत गीता प्रेस की भागवत है, इसका हिंदी अनुवाद भी हमारे गुरु जी ने किया हुआ है, वो आप पढ़ लेना। तो जो भक्ति में जिनका प्रवेश है वो तो रस में डूबते जाएंगे, और जिनका भक्ति में प्रवेश नहीं है उनको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने क्या क्या किया गोपियों के साथ, वो सब वर्णन है यहाँ पर। गोपियां जब थक जाती हैं तो जानते हो क्या करती है, बैठती नहीं है, श्री कृष्ण का कंधा पकड़ के ही खड़ी हो जाती है। क्यों? इतना रस, इतना अपनत्व, और श्री कृष्ण भी उनको डांटते नहीं है। किसी गोपी को डांटा नहीं, किसी को मना किया नहीं, क्योंकि समस्या नहीं है। क्यों? जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण हैं, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण हैं। बोले जितनी गोपियां थकी हुई हैं, श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो थकी हुई गोपियां जिनको नाचते नाचते पसीना आ गया है, उनको श्री कृष्ण पंखा झलते, पंखा झलते, श्याम सुंदर गोपियों की गर्मी को दूर करने के लिए पंखा झलते, जल छिड़कते हैं। गोपियां गिरने लगती है तो हाथ से उठाते संभालते, ये श्री कृष्ण की लीला है। ये भक्त परवशता है, भक्त की पराधीनता है श्याम सुंदर के जीवन में। अब जिन गोपियों की श्री कृष्ण सेवा कर रहे पंखा झलते हैं, भागवत में लिखा है, यही प्रसंग में लिखा है, गोपियों के मुख में जल छिड़कते हैं, ये भी यही लिखा है। गोपियों के महाराज संभालते हैं पूरा, उनको हाथ पकड़ के अगर गिरने लगते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं, ये भी यही लिखा है। तो संसार का मालिक, सारे संसार का सृष्टा जिन गोपियों की सेवा कर रहा है, सेवा ही तो हो रही है ना, उन गोपियों के भाग्य के विषय में कौन कल्पना कर सकता है, कौन सोच सकता है, उन गोपियों का क्या प्रेम था, क्या जीवन था। भगवान ठीक है वरदान दे दें, दर्शन दे दें, वो तो ठीक है भक्त के लिए होता ही है, लेकिन भगवान सेवक बन जाए और भक्त को सेव्य बना लें, यह तो कुछ ही भक्तों के जीवन में होता है, सबके नहीं होता है। भगवान यहाँ सेवक हैं, गोपियां सेव्य, गोपियों की सेवा कर रहे। गोपियां जब थोड़ा सावधान चित्त होती है। भगवान कृष्ण उनको बहुत शाबाशी देते, बहुत सुंदर नृत्य किया। अच्छा आप बताइए, सुंदर नृत्य श्री कृष्ण करते थे या गोपियां करती थी? कौन करते? श्री कृष्ण कलाकार थे, अखिल कलादि गुरु ननर्त लिखा है। जब कालीनाग के मस्तक पर नाचे, बोले सारी कलाओं के आदि गुरु श्री कृष्ण है। अच्छा नृत्य वो करते, अच्छा गान वो करते, लेकिन गोपियों की प्रशंसा करते। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। गोपियां जब थोड़ा व्यवस्थित हुई तो तासाम अति बिहारेण लिखा है, अति बिहार, बहुत बिहार हुआ गोपियों के साथ। अब इसलिए ब्रज के संत महात्मा कहते हैं, और गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में उसको और मर्यादा पूर्वक लिख दिया। जब जानकी जी ने श्री राम का दर्शन किया पुष्प वाटिका में, वो भी मधुर रस की लीला है, और बार बार उनका चित्त जा रहा है, वो निर्निमेश नेत्रों से श्री राम को देखने लग गई। सखियां समझ गईं कि जानकी जी प्रेम विभोर हैं, अब सखियां मना भी कैसे करें। सखियों ने एक शब्द कहा, कल फिर आएंगी, अभी चलिए, देर हो रही है, पुने आओ भी यह बेरिया काली। जानकी जी संकुचित हो जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, गोस्वामी जी ने मर्यादा कितनी सुंदर से ढंग से लिखा, बोले श्री राम को नेत्रों के रास्ते जानकी जी हृदय में ले आई और पलकों को बंद कर दिया। दीन हो पलक कपाट शयानी, पलकों के दरवाजे को बंद कर लिया, श्री राम को अंदर ला करके। अब गोस्वामी जी ने इतना कह के फिर आगे की क्या कहता है, क्यों भाई, जब दरवाजे से अंदर ले जा करके भगवान को दरवाजे ही बंद हो गया, तो अंदर जानकी जी और श्री राम के क्या प्रेम आलाप हुआ, वो ना तो किसी को पता है और ना किसी को कहने का हक है। तो गोस्वामी जी ने उसको मर्यादित कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं भी लिखे, इतने कह दिया, अति बिहारेण, बहुत बिहार किया गोपियों के साथ। अब वो अति विहार जिसकी जैसी महाराज योग्यता होगी, जिसकी जैसी भक्ति होगी, उस स्तर तक सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन सोचने समझने के बाद भी प्रवेश बिना राधा रानी की कृपा के नहीं होता है। सोचने समझने के बाद भी, श्रद्धा के बाद भी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर वृंदावन में पड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ करके, क्यों, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे हमको श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हुए। तो वो गुप्त है, वो अनिर्वचनीय है, उसका ज्यादा वर्णन नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसके बाद भगवान कृष्ण गोपियों को लेकर के बहुत थक गई थी, तो महाराज जमुना जी में प्रवेश करते, स्नान किया, गोपियों को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जब गोपियां थोड़ा स्वस्थ हुई, तो पानी फेंक फेंक के महाराज जल क्रीड़ा करने लग गए। गोपियों के ऊपर पानी फेंक रहे, गोपियां श्री कृष्ण के ऊपर पानी फेंक रही हैं। जहां प्रेम है वहां कोई दुराव नहीं है, वहां कोई छिपावा नहीं है। पानी फेंकने लग गए। अब महाराज पानी फेंकते फेंकते हुए जब गोपियां थक गई, थकती तो गोपियां ही थी, श्री कृष्ण तो थकने वाले है नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सर्वसमर्थ है। जो 5-6 घंटा काली नाग के मस्तक पर नाच के नहीं थकते हैं, वो गोपियों के साथ नृत्य करके कहां से थके, वो तो यमुना पुलन पर नृत्य हो रहा है। थकती तो गोपियां ही, लेकिन जब गोपियां थक जाती हैं तो श्री कृष्ण उस लीला को बदल देते। माने श्री कृष्ण इतने रस के बीच में भी गोपियों का कितना ध्यान रखते हैं, उनका कितना प्रेम है गोपियों के प्रति। तो जल क्रीड़ा करते करते जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब गोपियां फिर थक गई, भगवान कृष्ण ने गोपियों को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके महाराज वन विहार प्रारंभ किया, वन विहार, घनघोर जंगल में, जहां चांदनी का भी प्रवेश नहीं था, जहां पहले गोपियां गई थी श्री कृष्ण को खोजने के लिए, वन विहार करने लग गए। गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लग गए, दौड़ भाग करने लग गए, गोपियों से छिप जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, हंसी खेल होने लग गया, विनोद होने लग गया। ये वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कर रहे हैं। स्वाभाविक सुखदेव जी की नजर सब महात्माओं पे गई, क्योंकि वहां तो सबसे ज्यादा श्रोता संत थे। सुखदेव जी जब कथा कर रहे थे सुखताल में, मुख्य श्रोता परीक्षित था, बाकी ज्यादा श्रोता संत थे। तो कुछ संत तो डूबे हुए थे, भगवान की उस लीला का ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी बोलते जा रहे थे और संत लोग आंखें बंद करके उस लीला को देखते जा रहे थे, शब्द के साथ अर्थ प्रकट होता जा रहा था। लेकिन कुछ महात्माओं के चेहरे संकुचित थे, आंखें खुली हुई थी, उनको लग रहा था ये सुखदेव जी अवधूत महात्मा, दिगंबर महात्मा, ये इतनी सुंदर ज्ञान चर्चा के बीच में क्या नाचने गाने की चर्चा कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पहली बार जब जबलपुर गए थे, वहां के लोग अभी भी बताते हैं और उनके प्रवचनों में भी महाराष्ट्र की ही चर्चा किया, महाराष्ट्र पे कथा किया। और गुरु जी की अवस्था उस समय 40 के आसपास, और इतना विलक्षण, अब वो तुम्हारा साक्षात जिनको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो चुका है, उस कोटि का महापुरुष जब महाराज की चर्चा करे तो डूब जाते थे स्वयं। और जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ? सिनेमा घर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। कथा सुनने आते थे, सिनेमा घरों में नहीं जाते थे। सिनेमा घर के मालिकों ने आके निवेदन किया, महाराज आप अपनी कथा का समय थोड़ा बदल दीजिए, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है। आप कल्पना करें, सिनेमा घर में रस आता है लेकिन वो सात्विक रस नहीं है, वो राजस और तामस है, वो बाद में दुख देता है, लेकिन ये सात्विक रस है। जिस समय सुनोगे उस समय भी रस देगा, और सुनने के बाद जब भी सोचोगे तब भी रस देगा। और उधर क्या हुआ, कुछ मीडिया के लोग थे, अब मीडिया के लोग यहां कोई बैठे हो तो नाराज मत होना, वो खिलाफ में लिखने लग गए पेपरों में। एक जवान महात्मा आया है रासलीला पे, ऐसे बोल रहा, ये बोलता गोपियों ने किया, कृष्ण ने ये किया। तो स्वाभाविक जैसे भारतवर्ष का नियम है, लोग सोचते हैं बीच का रास्ता अपनाओ। कुछ लोगों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी इन लोगों को कुछ दे दो तो आपके विरोध में नहीं छापेंगे। तो महाराज जी ने कहा, भाई हम क्यों दे दें, हम खुश हो के कुछ दे दें वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे विरोध में ना छापे इसलिए दे वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुरूप बोल रहे हैं, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। एक दिन वो होगा कि ये स्वयं आएंगे और हमसे हमारे अनुरूप छापेंगे, एक दिन वो आएगा। और सातवें दिन वही हुआ, तो सिद्ध महापुरुष थे, वो छापते रहे 5-6 दिन और भीड़ बढ़ती गई, सिनेमा घर बंद होने लग गए, शहीद स्मारक में प्रवचन होता था, हजारों की भीड़, लोग जो चरण स्पर्श नहीं कर पाते थे, लोग बताते हैं जिस गाड़ी में लोग बैठते थे, गुरुजी बैठ के जाते थे, वो गाड़ी को प्रणाम कर लेते थे, इतना भाव था लोगों का। अंत में सब पेपर वालों ने आके माफी मांगी, महाराज हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ सके कि किस, अरे सामान्य एक व्यक्ति नहीं समझ सकता तो पेपर वाले क्या समझेंगे इस रहस्य को, इस घटना को। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो समझा वो लिखा, अब जो समझे हो वो लिख देना। फिर बाद में महाराज प्रशंसा में लिखने लग गए। तो सुखदेव जी के समय भी यही हुआ, हमारे गुरुदेव के समय भी यही हुआ, और आज भी कितने लोग लाठी लेके श्री कृष्ण के पीछे लगे रहते, रासलीला क्यों की, ऐसा क्यों किया। हमारे पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज बड़े विरक्त महात्मा थे, वैसे यहां समाधान मिलेंगे क्यों किया, 4 समाधान है, लेकिन वो फक्कड़ महात्मा, वो बड़ा विलक्षण समाधान देते थे। वो कहते थे गोपियों के घर वालों को समस्या नहीं, गोपियों के परिवार वालों को समस्या नहीं, ब्रज में किसी को समस्या नहीं, तो तुमको क्या समस्या है। भाई उनके परिवार वाले शिकायत करें, आपको जज बनावे कि ठीक हुआ कि गलत हुआ, तो अपना निर्णय दो, अपना कमेंट दो, बीच जबरदस्ती बीच में पड़े हुए तो ठीक है, वो उनके अपना भावना में बोलते थे। लेकिन सुखदेव जी ने जब देखा, क्या देखा, कि ये जो रासलीला हो रही, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग है भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के साथ लीला की, तो उसको देख करके लोग संकुचित होने लग गए। सुखदेव जी समझ गए क्या, अभी ये लोग देहावस्था में बैठे हुए, जिन लोगों के मुख में संकोच था, जो देहातीत थे वो तो रस ले रहे थे, जो देहावस्था में थे वो संकुचित थे। सुखदेव जी ने सुनाना बंद कर दिया। इस लीला को सुनकर के जिसको संकोच होने लग जाए वो इस लीला का सुनने का अधिकारी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है। अब भागवत उठा के देखना, अचानक रास लीला का वर्णन बंद हुआ है, कोई क्रम से हुआ वैसा नहीं, अचानक बंद हो गया बीच में। राजा परीक्षित भी चौंक गए, ये क्या हुआ, रासलीला का वर्णन क्यों बंद हो गया अचानक, इतनी सुंदर। राजा परीक्षित तो भक्त थे, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, वो तो उसका रस ले रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा अचानक बंद हो गया, तो देखा श्रोताओं को देख करके, जैसे श्रोता होते हैं वक्ता के वैसे भाव बनते। अब जैसे आश्रम में कथा होती है, हो रही है, इतना शांत एकांत यहाँ का वातावरण, इतने अच्छे श्रोता के कहने में अलग आनंद आता है, रस आता है। तो राजा परीक्षित ने श्रोताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूछ दिया अशोकदेव जी महाराज से, महाराज संस्थापना धर्मस्य प्रश्माय इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरा स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन पराई स्त्रियों के साथ रासलीला करना, नृत्य करना, ये अधर्म की जैसी लीला श्री कृष्ण ने क्यों की जिससे लोगों को संकोच होता है। पहली बात तो ये प्रश्न में जो परदाराभिमर्शनम है यही गलत है। पराई स्त्रियों के साथ रासलीला की, ये कहां से आ गया। कुछ गोपियां थीं जो गोलोक से ठाकुर जी के साथ अवतार ली थी, ललिता विशाखा चंद्रावली, ये तो हमेशा ठाकुर जी के साथ रहती हैं। जब ठाकुर जी आते हैं तो अवतार लेते हैं, ठाकुर जी अंतर्धान होते हैं तो उन्हीं के साथ गोलोक जाती। कुछ गोपियां थीं जिन्होंने कात्यायनी उपासना करके ठाकुर जी से वरदान प्राप्त किया था, और श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि हम तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे और रासलीला करेंगे। तो यहाँ पर दारा भी मर्शनम आ कहाँ से गया, दूसरी की स्त्रियां हैं, ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हो गया। और ये प्रश्न के जवाब में सुखदेव जी थोड़ा नाखुश हो गए, नाराज हो गए। मैं तुमको पहले बता चुका हूं परीक्षित कि उन्होंने उपासना की है, श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया है, फिर परदारा भी मर्शनम तुम्हारे मुख से कहां से निकल गया। भक्त को रोष कभी नहीं आता, लेकिन भक्त के आराध्य के खिलाफ अगर कोई बोलने लग जाए, गुरु के खिलाफ या इष्ट के खिलाफ, फिर भक्त अपने को संभाल नहीं पाता है। ये अगर वास्तविक भक्त है, प्रेमी भक्त है, समर्पित भक्त है, और उसके पहचान करना हो तो जानबूझ के थोड़ा छेड़ दो, तो उसके इष्ट के विषय में बोल दो, कुछ बोल दो, वो फिर नहीं संभलेगा। महाराज सुखदेव जी थोड़ा सा नाराज जैसे बोलते, उक्तम पुरस्तात एतत, राजन में तुमको ये सब पहले बता चुका हूं, तुम ये पूछते हो कि दूसरे के गोपियों के साथ रासलीला क्यों की सारी कथा सुनने के बाद। महाराज राजा परीक्षित जानते थे, लेकिन वो कभी कभी लोग दूसरों के काम में लग जाता है ना, दूसरों का प्रतिनिधि बन जाता, उसमें डांट खा गए हो। श्रोताओं के प्रति राजा परीक्षित को मालूम था कि नहीं है दूसरी गोपियां, लेकिन श्रोताओं को संकोच हो रहा था, उनके प्रतिनिधि बनकर लोक कल्याण, लोक कल्याण में प्रशंसा भी मिलती है, कभी कभी गाली भी मिलती है, ध्यान रखना, तो उसमें डांट खा गए। फिर सुखदेव जी महाराज इसके चार समाधान देते, राजन श्री कृष्ण ने जो कुछ किया, गोपियों के साथ रासलीला की, चीरहरण किया, महाराज मिट्टी खाई, झूठ बोले, जो भी किया, पहला समाधान क्या है, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वरार्णाम च साहसम, ईश्वर माने समर्थ। सुखदेव जी कहते हैं राजन जो मनुष्य के नियम होते हैं, वो नियम पशु में भी नहीं लगते, वो नियम देवता में भी नहीं लगते, तो वो नियम श्री कृष्ण में कैसे लगेंगे, वो भगवान है, भगवान में मानवीय नियम नहीं लगते, वो समर्थ है। और उदाहरण क्या है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे गंगा जी, केशी का शरीर पूरा हो जाता है तो हम लोग गंगा जी ले जाते हैं कि इसका उद्धार हो जाएगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दो, जमुना जी में प्रवाहित कर दो। तो मुर्दा के शरीर से अगर एक घड़े जल का स्पर्श हो जाए तो वो जल अपवित्र हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन मुर्दा अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो गंगा जी अपवित्र होंगी या मुर्दा पवित्र हो जाएगा, क्या होगा? मुर्दा पवित्र होगा, उस जीवात्मा का उद्धार होगा। तो इसी प्रकार से जीव एक घड़ा जल माने जीवात्मा, जीवात्मा अगर ऐसी कोई लीला करेगा तो उसका जीवन अपवित्र होगा। इसलिए रास लीला ईश्वरीय लीला है, ये मानवीय लीला नहीं। फिर ध्यान रखना, प्रारंभ में भी यही कहा गया, समापन में भी यही है, यह ईश्वरीय लीला है। जैसे एक घड़ा जल अगर मुर्दे से स्पर्श हो जाए तो जल अपवित्र हो जाएगा, ऐसे सांसारिक जीवात्मा अगर भगवान कृष्ण ने जो लीला की ये लीला करेगा तो उसका जीवन अपवित्र हो जाएगा, निंदनीय हो जाएगा। लेकिन जैसे गंगा जी में मुर्दा पड़ने के बाद भी गंगा अपवित्र नहीं होती बल्कि मुर्दा पवित्र हो जाता है, ऐसे कोई कामना से भी श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो श्री कृष्ण का जीवन अपवित्र नहीं होगा बल्कि कामना युक्त व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। वो ईश्वर है, वो समर्थ है। लेकिन अब ये लॉजिक आजकल के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या आज की जो यंग जनरेशन है वो तो जल्दी नहीं मानेगी कि भगवान है तो कुछ भी करे और हम मनुष्य हैं तो कुछ भी ना करें, ये क्या लॉजिक है, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, कई समाधान है, चार समाधान है इसमें। दूसरा समाधान है वेदांत की दृष्टि से, वेदांत सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत अद्वैत, शंकर वेदांत। शंकर वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही नापरा, जीव ही ब्रह्म है, जीव को ब्रह्म होना नहीं है, उपाधि का बात करना है बस। तो कहना क्या चाहते, बोले दोष का प्रवेश होता है द्वैत में, द्वैत में। हाँ, ध्यान से सुनना, लोभ होगा पैसे के प्रति, काम होगा दूसरे के प्रति, क्रोध होगा व्यक्ति के प्रति, अभिमान होगा व्यक्ति के प्रति, ईर्ष्या होगी व्यक्ति के प्रति। तो जितने दोष हैं, जब तक द्वैत है माने दो है, द्वैत या अनेकत्व हो, द्वैत हो द्वित्व हो अनेकत्व, द्वैत में दोष का प्रवेश संभव है। लेकिन जहां ब्रह्मनिष्ठा है, जहां दूसरे का अभाव है, जहां एकत्व की अनुभूति है, श्री कृष्ण जहां अपनी आत्मा के रूप में सबको अनुभव करते हैं, वहां दोष का प्रवेश संभव कैसे होगा? श्री कृष्ण में दोष का आरोप कैसे हो सकता है? ये वेदांत का समाधान। भक्ति की दृष्टि से समाधान देते हैं, क्या ये संत महात्मा जिन भगवान कृष्ण का भजन करके, जिन भगवान कृष्ण के भक्ति का रस लेकर के इन दोषों को पार कर जाते, संत महात्माओं के जीवन में देखा जाता है कृष्ण प्रेम में इतने मस्त रहते, इतना रस रहता है कि संसार उनको तुच्छ दिखाई देने लग जाता है। एक महात्मा के पास एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बार बार जाते थे, वो महात्मा विरक्त थे, बार बार जावे महाराज कुछ सेवा बता दो, कुछ सेवा बता दो, और कुछ ना कुछ हर बार पूछते रहे। और कुछ समय तो उन्होंने महाराज शिष्टाचार का परिचय दिया, जब वो ज्यादा ही जाने लग गए और हर बार पूछे कि कोई सेवा बता दो, अब वो विरक्त महात्मा, ओ महात्मा क्या बोले जानते हो, बोले तुम्हारी सेवा यही है कि आगे से आना मत या, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है कि आगे से आना मत या। बोले तुमको करना धरना कुछ है नहीं, रोज आके मेरा समय खराब करते हो, अपना समय खराब करते हो, तुम मेरी क्या सेवा करोगे, क्या सेवा करोगे मेरी, रोटी कपड़ा मेरा प्रारब्ध दे रहा है, शरीर मेरा ठाकुर जी चला रहे, और मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तू क्या सेवा करेगा मेरी, क्या सेवा करेगा ये महाराज। पैसे वाले सोचते हैं ना कि हम पैसे से साधु को अपनी जेब में रखेंगे। एक विरक्त महात्मा थे, उनके शिष्य यही दिल्ली के थे, बहुत पैसे वाले थे, कोई नाराज मत होना, यहाँ पैसे वाले बैठे हैं, सब अच्छे भले लोग हैं, यहाँ अब हो जाना तो हो जाना, हमको भी आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो महाराज वो विरक्त महात्मा थे, जैसे इलाहाबाद का कुंभ है अगले साल, ऐसे इलाहाबाद का कुंभ था। अब वो शिष्य बोला, गुरु जी सबके इतने बड़े बड़े शिविर लगते, टेंट लगते, आपका नहीं लगता है, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, आप टेंट लगवाइए, आपका भी टेंट लगना चाहिए, शिविर लगना चाहिए। अब वो विरक्त महात्मा वो बोले, हाँ अच्छी सलाह दिया तुमने, तुम 20-50 लाख रुपया दे दोगे और गुरु जी एक महीना पहले जाएंगे इलाहाबाद, पहले वो अफीसरों से मिलकर जमीन अलाट कराएंगे, फिर बिजली वाले से मिलेंगे, पानी वाले से मिलेंगे, टेंट वाले से मिलेंगे, हाँ झोपड़ी बनाने वाले से मिलेंगे, प्लम्बर से मिलेंगे, नल वाले से मिलेंगे। गुरुजी सारा शिविर तैयार करके रखेंगे, फिर जब मौनी अमावस्या आएगी तो तेरा फोन आ जाएगा, गुरुजी मैं भी स्नान करने आ रहा हूँ। तब गुरुजी तेरे लिए तंबू लगा के तैयार करके रखेंगे। बोले मूर्ख कहीं का, मेरे को गुरु बनाया या अपना मैनेजर बनाया है? तो पैसा दे के मेरे को मैनेजर बनाना चाहता है, मैं तेरी वहां देख रेख करूं, तेरे लिए तंबू लगा के रखूं कि सेठ जी आइए आपका तंबू तैयार है, अगले से मत कहना। तो विरक्त महात्माओं का तो ये हाल होता है महाराज। जो भक्त है जिसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, वो महाराज अपनी भक्ति में मस्त है, रस में मस्त है। हरिदास जी के जीवन में भी ये हुआ था। अकबर जाता था, गुणग्राही था, तानसेन उनके शिष्य थे हरिदास जी के। तो अकबर ने एक बार कहा, महाराज कुछ सेवा, कुछ सेवा, और राजा था यहाँ का, कुछ भी कर सकता था, दे सकता था। तो हरिदास जी अब चूंकि भक्ति युक्त वैराग्य था तो कठोर वाक्यों का प्रयोग नहीं करते थे, ज्ञान युक्त वैराग्य में थोड़ा कठोरता रहती, भक्ति युक्त जो वैराग्य हो उसमें थोड़ा मधुरता रहती। जब बार बार बोलने लग गया कि कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा बताइए, तो हरिदास जी थोड़ी उस पर कृपा किए और दिव्य दृष्टि दिए, उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लग गया। दिव्य यमुना जी बह रही, मणियों के घाट बने हुए हैं, घाट का एक कोना टूटा हुआ है। हरिदास जी ने अकबर से कहा, ये कोना ठीक करा दे दो। अकबर को पसीना आ गया, ये जो मणि यहां लगे हैं वो तो मैंने कभी देखी नहीं, मेरे पास है नहीं, मैं कहां से ठीक कर। चरणों में गिर पड़ा। हाँ उन्होंने उस ढंग से हैंडल किया, उसका अपमान नहीं किया, डांटा नहीं, आगे से फिर नहीं पूछता था। अरे हरिदास जी बोले, मैं भजन करता हूँ, भिक्षा मेरे को ठाकुर जी दिलवा ही देते हैं, और क्या करेगा तू। हाँ मेरी सेवा है, तू भी भजन कर, हाँ तू भी ठाकुर जी का भजन कर, यही मेरी सेवा है। तो महाराज जो भक्त है, हाँ प्रेमी है, वो कृष्ण प्रेम में इन दोषों को पार कर जाता है। तो भगवान कृष्ण में दोषों का प्रवेश कैसे होगा? तीन समाधान दिए भगवान के पक्ष में, भगवान के बचाव में। किसी ने जिज्ञासा की कि मान लिया श्री कृष्ण में दोषों का प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन हजारों गोपियां थीं, क्या किसी गोपी के मन में भी कोई कामना नहीं थी? सभी का जीवन दिव्य था। भागवत में एक दो जगह श्लोक आए हैं, गोप्या कामात, गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया कामना से। यद्यपि टीकाकारों ने वहां पर काम शब्द का अर्थ प्रेम किया है, इसलिए गुरुमुख से पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र पढ़ने से व्यक्ति उलझ जाता है। फिर भी अगर आज के व्यक्ति के मानसिकता के अनुसार स्वीकार कर लिया जाए कि किसी एक दो गोपी में कृष्ण की प्रति कामना भी थी, तो सुखदेव जी चौथा समाधान देते हैं, राजन कलयुग के लोगों की दृष्टि से अगर ये बात मैं स्वीकार करूं, यद्यपि ऐसा है नहीं, कलयुग में आने वाले लोग जो विचार करेंगे उनकी दृष्टि से अगर मैं स्वीकार कर लूं कि गोपियों में एक दो गोपियों में किसी में अगर कृष्ण के प्रति कामना भी थी, तो परिणाम क्या हुआ? उस कामना का संबंध उन्होंने दुनिया से नहीं जोड़ा, कामना का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा, जिससे कामना की निवृत्ति भी हो गई और कृष्ण की प्राप्ति भी हो गई। तो ये तो हमारे लिए साहस है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर हमारे आपके जीवन में भी दोष हैं, तो इन गोपियों से शिक्षा मिलती है क्या? दोष है तो घबराने की जरूरत नहीं, दोष का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ दो तो दोष गुण बन जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ दोष को गुण बना देंगे। अरे क्रोध से कौन जोड़ा? शिशुपाल और दंत भक्त। हाँ लोभ से कौन जोड़ा? अर्थ, अर्थ की प्राप्ति से कितने भक्त महाराज, एक डाकू था महाराज, वो एक ऐसे पंडित जी कथा कह रहे थे कोई, और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, वो डाकू का नाम मेरे को ठीक ध्यान नहीं आ रहा, शायद किसी को मालूम हो गया, तो ब्रज की कथाओं में बड़ा पॉपुलर, रासलीला में उसकी लीला दिखाई जाती, गोवर्धन डाकू। तो वो महाराज वो पुलिस से छिपता हुआ कथा में आके बैठ गया, क्योंकि पुलिस सोचेगी कि डाकू कथा में तो नहीं बैठ सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि डाकू कथा में नहीं बैठ सकता है। कथा में कथा में सब तरह के लोग बैठ सकते। वो जो रामकिंकर जी महाराज कहते थे, रामकृष्ण मिशन रायपुर की घटना है, वहां बोले एक सेठ जो कभी कथा में नहीं आते थे, धर्म कर्म नहीं करते थे, अचानक आने लग गए और बड़े प्रेम से आवे, बड़ी सुंदर माला लावे, पंडित जी को पहनाओ, पूरी कथा सुने। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कभी आते नहीं थे, अचानक कथा में इनका भाव कैसे बन गया। एक दिन किसी ने पूछा, आपका तो बड़ा भाव परिवर्तन हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। तो सच बता दिया, बोले इनकम टैक्स में मेरा मुकदमा फंसा हुआ है और इनकम टैक्स कमिश्नर पंडित जी कथा में रोज आता है, मैं सोचा मैं भी चलूं तो कमिश्नर देख लेगा कि मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैं भला आदमी हूं तो कथा में डाकू नहीं आएगा ये कल्पना मत करिएगा, आप में नहीं होगा कोई, ये मैं कह सकता हूं लेकिन कोई नहीं आएगा। तो वो गोवर्धन डाकू आके कथा में बैठ गया पुलिस से बचने के लिए। अब महाराज, अब वो बैठ गया तो सुनने लग गया, वो पंडित जी वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण महाराज, वो हीरे का हार, वो सोने की करधनी, वो सोने के कड़े। गोवर्धन डाकू सोचा ये लड़का कौन है, इतनी ज्वेलरी जिसके पास है। वो पूरी कथा में बैठ गया, मैं बैठा रहा कथा में, और कथा के बाद सारे श्रोता तो चले गए प्रणाम करके, वो बैठा रहा। जब सब चले गए तो पंडित जी को प्रणाम किया, 100 रुपया दक्षिणा भी चढ़ाई। बोले पंडित जी वो लड़का कहाँ रहता है जिसकी आप कथा कह रहे थे, हीरे का हार पहनता है, सोने की करधनी पहनता है, सोने के कड़े पहनता है। पंडित जी बोले वो वृंदावन में रहता है। बोले नहीं, ठीक पता बताओ, जानते हो मैं कौन हूं? गोवर्धन डाकू। बड़ा पॉपुलर था वो, तो घबरा गए पंडित जी को तो पसीना आ गया। वो तो कथा, वो स्वयं उनको नहीं पता था, कृष्ण भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं था, पुस्तक से वो कथा कहते थे। अब वो अपनी जान बचाने के लिए बोल दिया कि भैया वृंदावन में रहता है, तू चला जावा। वो जानते थे नहीं बताऊंगा तो मेरे को मारेगा ये, कि बता पता उसका। अब क्या हुआ जानते हो, उसकी कथा मैंने पढ़ी है, लीला भी दिखाते हैं रासलीला में, उसकी लीला दिखाते महाराज। वो कृष्ण को खोजता खोजता वृंदावन पहुंच गया, और ये कलयुग की घटना है। सभी लोगों से पूछता था वो नंद जशोदा का लाला कहाँ रहता है। अब लोग सोचें इसका दिमाग ठीक है नहीं है, वो तो ठाकुर जी तो अंतर्धान हो चुके हैं। संतों ने कह दिया यही ब्रज में रहता है, जमुना किनारे रहता है, किसी ने कह दिया गाय चराता, कोई बोल दिया निधिवन में रहता, कोई बोलता से, सब जगह खोज डाला। अब वो चिंतन करते करते इतना भाव बना, जब ठाकुर जी नहीं मिले तो वो महाराज सुसाइड करने के लिए सोचा, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए उसी श्रृंगार के साथ, जिसकी वो कल्पना करता था। तो लेकिन ठाकुर जी के प्राकट्य के बाद उसको डाका डालने की आदत तो छूट गई, वो बड़ा भारी महात्मा बन गया। गया था किस उद्देश्य, इसलिए कथा में जाने में सब तरह से लाभ है। किसी भी भाव से आ जाओ संत के पास, कथा में ठाकुर का कोई ना कोई लाभ हो ही जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हमारे जीवन में दोष भी विद्यमान है तो दोष का संबंध हम दुनिया से जोड़ेंगे तो महाराज नरक जाना पड़ेगा, और दोष का संबंध भगवान से जोड़ देंगे तो भगवान दोष की निवृत्ति कर देंगे और अपने को अपना लेंगे। इसलिए हमारे आपके लिए तो चौथा समाधान बहुत अच्छा है। निराश गोपियां सब दिव्य थी, बहुत अच्छी लीला है, लेकिन हमारा जीवन उतना दिव्य नहीं है तो हमको भगवान कैसे मिलेंगे, हमारे लिए तो निराशा ही हाथ लगेगी। ये चौथा समाधान जो सुखदेव जी ने कहा कलयुग के लोगों के लिए, कि निराश मत होना कि गोपियों को श्री कृष्ण ने अपनाया जिनका जीवन इतना दिव्य था, तो हमारा जीवन तो उतना दिव्य हो नहीं सकता, तो हमको कैसे अपनाएंगे। तो इसलिए चौथा समाधान दिया, और सुखदेव जी कहते हैं जिन श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनाया था उन्हीं श्री कृष्ण ने कुब्जा को भी अपनाया था, उन्हीं श्री कृष्ण ने शिशुपाल का भी उद्धार किया था, उन्हीं श्री कृष्ण ने पूतना को भी माता का लोक दिया था। श्री कृष्ण वही है, वो अलग बात है। गोपियों को रस अधिक मिला क्योंकि वो प्रेम से जुड़ी थी, लेकिन जो जिस भाव से जुड़ेगा कृष्ण प्राप्ति तो हो जाएगी, रस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। महाराज अब इस प्रकार से उन्होंने भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत, भगवान ऐसी लीला करते क्यों। और कथा में मैं देखता हूं, यद्यपि जब मैं भागवत करता हूं तो संगीत में भागवत नहीं होती, भागवत में संगीत होता है, थोड़ा फर्क रहता है। आजकल बहुत पॉपुलर है संगीत में भागवत, संगीत में भागवत माने जहां संगीत है भागवत थोड़ा गायब है। भागवत में संगीत हो जाए वहां तक तो ठीक है, नारदीय शैली उसको बोलते हैं। तो मैंने देखा इधर 12-15 साल हो गए मेरे को भागवत सप्ताह करते हुए, यंग जनरेशन के बहुत लोग जुड़े हुए, लेकिन वो जुड़े कैसे, ऋषिकेश में 7-8 कथाएं हो गई और जिनके आयोजक माता पिता कथा कराते, बच्चों को आना होता क्योंकि माता पिता के कार्यक्रम की व्यवस्था करनी, वो सब लैपटॉप सीडी प्लेयर और ये सब लेके आते थे कि 8 दिन कैसे निकालेंगे वहाँ। लेकिन जब उन्होंने उत्सव देखा, नंदोत्सव देखा, कृष्ण जन्म देखा, महाराज उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि किसी का लैपटॉप सीडी प्लेयर खुला ही नहीं और उसके बाद वो कृष्ण भगवान की कथा भी सुनने लग गए। ये तरीका है, तो हर चीज को तरीके से अपनाना पड़ता है। कौन व्यक्ति कैसे आएगा, अगर भगवान कृष्ण के नंदोत्सव में कोई नृत्य कर रहा है तो क्लब में और होटल में नाचने से तो बहुत अच्छा है ना। वो एक ना एक दिन कृष्ण भगवान के फंक्शन में जब आएगा तो एक ना एक दिन सुनने लग जाएगा ये कौन कृष्ण भगवान है, जिनके फंक्शन में इतना आनंद आता है, इतना रस आता है, उनके विषय में सुनने लग जाएगा। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो नंदोत्सव के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। जो महाराज भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है वैसी लीला करते, क्यों अवतार इसी को बोलते, अवतार माने उतरना, उतरना। जीव जहां पर बैठा हुआ है जीव वहां से ऊपर नहीं चढ़ सकता है, भगवान अवतार लेके माने उतर करके अवतरण करके वहां जाते हैं, उसके लेवल पे जाते हैं, उसके लेवल की लीलाएं करते हैं, फिर उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, इसी का नाम तो अवतार है, उसी का नाम तो श्री कृष्ण है। तो महाराज भगवान ने भजते तादृशी लीला, ऐसी लीला की जिससे गोपियां तो धन्य हुई ही, आज के व्यक्ति का भी मनोबल बढ़े, निराश ना हुए कि श्री कृष्ण किसी को भी अपना सकते हैं, जो पुतना को अपना सकते हैं, कुबजा को अपना सकते हैं, कंस को अपना लोक दे सकते हैं, तो उनसे गया बीता आज भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। मतलब श्री कृष्ण सबको अपना सकते। 6 महीने की रात्रि व्यतीत हुई, गोपियों को पता नहीं लगा जहां श्री कृष्ण साक्षात बैठे हों। हमारे गुरु जी के साथ हमारा जीवन लगभग 6 साल व्यतीत हुआ, लेकिन वो 6 साल अभी भी स्मृति पटल के एक अलग समय है। लगता नहीं था कि कलयुग है और लगता नहीं था कि ये भूलोक है, ऐसा लगता था हम लोग बैकुंठ में बैठे हुए। दिन भर कृष्ण चर्चा, दिन भर सत्संग, दिन भर साधना की चर्चा, आनंद वृंदावन वास्तव में ब्रज, वास्तव में ब्रज था। जाजू जी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, जिन लोग गुरु जी के समय वहां, गुप्ता जी बैठे यहाँ, हमारे गुरुदेव के समय जिन लोगों का आना जाना रहा है आश्रम में, दिन रात कैसे बीतते थे ये किसी को पता नहीं लगता था। तो जहां साक्षात भगवान कृष्ण है वहां 6 महीने कैसे बीत गए ये गोपियों को पता नहीं लगा, और नहीं लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, श्री कृष्ण को ही कहना पड़ा गोपियों ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए, लीला विश्राम का समय आ रहा है, अब तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। गोपियां न चाहते हुए भी इतनी समर्पित है, श्री कृष्ण के चरणों में सब गोपियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सभी गोपियां अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण की ये महाराज लीला जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा माने नहीं समझ में आवे तो भी शास्त्र और संत की बात पे विश्वास रखता हुआ श्रद्धा पूर्वक सुनता है और कहता है, उसके जीवन की सांसारिक तुच्छ कामनाएं निवृत्त हो जाती है। जिस लीला का फल ये है कि संसार की कामनाएं निवृत्त हो जाए, ठाकुर से मिलने की चाह उत्पन्न हो जाए, ठाकुर के भजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, जिस लीला का फल ये है वो लीला कितनी दिव्य होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान कृष्ण सबको आशीर्वाद दे करके अपने स्थान के लिए स्वयं प्रवेश किए, गोपियां वहां से चली जाती हैं और महाराज लीला पूर्ण तो कभी नहीं होती क्योंकि अभी भी हो रही है। निधिवन में अभी भी मान्यता है कि नित्य राज लीला होती है। और जो लोग वृंदावन जाते हैं, मैं तो एक बार देखा सायंकाल में खड़ा था, रात्रि में आज भी कोई वहां नहीं रहता निधिवन में। सूर्यास्त के समय संयोग से एक बार मैं वहां था, आश्चर्य हुआ मेरे को देख के, लोग तो निकल ही जाते, वृंदावन के बंदर जो सारे भारत में सबसे उपद्रवी बंदर, वो बंदर भी लाइन लगा के निधिवन से बाहर निकल जाते। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये आज भी वृंदावन का महत्व है। क्यों? रात्रि में वहां बिना दिव्य साधना के किसी का प्रवेश नहीं है। आज भी ठाकुर जी वहां रासलीला करते, इसलिए रासलीला का विश्राम कभी नहीं होता है। यत किंचित अपने हम लोगों ने चर्चा की, पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज ने जो बड़े महाराज स्नेह पूर्वक, उन्होंने यही कहा जब चर्चा हुई विषय के विषय में कि महाराष्ट्र पे चर्चा करना है, क्योंकि इस विषय को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी भ्रांतियां। क्यों? आज समय नहीं है सुनने पढ़ने के लिए, और समय है तो संस्कृत के ग्रंथों को समझने की योग्यता बहुत कम हो गई, क्योंकि संस्कृत की एजुकेशन नहीं। तो ये ऐसे विषय हैं, इतने स्पष्ट हैं, भागवत के आधार पर ही आप लोगों को रस आया, मेरे को रस आया, और पूज्य स्वामी जी का बड़ा स्नेह मिला। एक वात्सल्य रूपी जो प्रेम है वो हमेशा उनका मिलता रहा। आज भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलेंगे, थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें और उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन होंगे। आप लोग शांति से बैठे रहें, आज प्रसाद वितरण होगा और आश्रम के महाराज जो एक्टिविटीज हैं, प्रवृत्तियां, उनके विषय में जो सूचना पत्र है, पुस्तिका है, वो जिन लोगों को कल नहीं मिली वो आज ले सकते हैं। थोड़ा संकीर्तन करें। बोले राश बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन।
हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग,
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग,
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग,
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग।
हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण,
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण,
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण,
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण।
हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
जय हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।
पूज्य स्वामी जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोगों को इस सत्र के विश्राम में आशीर्वचन देंगे और आशीर्वचन के पश्चात आप लोग प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। आज प्रसाद की व्यवस्था।
ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम श्रद्धेय स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी, उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों, कई जन है, सबको अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आई कैन आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम। सबसे जिनकी नाम लेना जरूरत है, सामग्रिक रूप से भगवत कथा प्रेमी भक्तजन, 7 दिन कैसे समय बीत गया पता नहीं चल रहा है। यही आश्रम में जब पूज्य रंगनाथानंद जी महाराज अध्यक्ष थे, इस हॉल की जगह पर्याप्त नहीं था, उसी कारण से हॉल के पीछे भी थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ा। फिर भी उस समय काल प्रधानमंत्री लेके सब हर रविवार आ जाते थे, हॉल तो भरा हो जाता था, बाहर भी लान में गेट में, गेट के बाहर कम से कम 1,000-1,500 व्यक्ति आते थे हर रविवार। उनकी शरीर रखने के बाद धीरे धीरे ऐसा लगा ऐसा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हॉल है, इसलिए आप ऊपर देखेंगे कई जगह में व्यवस्था किया, कुछ स्क्रीन लगा के ये वक्ता के मन में कोई दुख नहीं आए, देखे इतनी कम व्यक्ति आए हुए, ऐसा भी व्यवस्था बाद में किया। लेकिन जब भगवान कृपा से मैं यहाँ आए, उस समय मैं पहले सब पर्दा हटा दिया, मेरा मन में इतना जरूर विश्वास था फिर हॉल भरेगा। इसकी बहुत अच्छी तरह शुरुआत किए परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी, उनके हम सब बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। आप ये हाल देके मन बहुत आनंद आ जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल छोटे हाल से किया, इसके विशेष हम लोग सब आभारी हूँ केतन जी के पास, वो बहुत सबको संवाद दिया, कार्ड फार्ड छपाया, व्यवस्था किया, बहुत उत्साह लेके। मैं केतन जी कहता आप तो कभी भी, आपके इतना उत्साह है कभी किसी विषय में नहीं देखा, ये भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि कैतान जी के बैठने के समय नहीं मिलता है, लेकिन हर एक दिन आ जाते हैं, सुनते हैं, क्योंकि अपना घर पे जब करते हैं वहाँ उनका समय नहीं है, व्यवस्था में है, यहाँ लेकिन एक माननीय अतिथि रूप में बैठ के सुनते हैं। तो ये 7 दिन बहुत बहुत आनंद में समय चला गया। ये बचपन से ये भी हम लोग अनुभव करते थे, दक्षिण भारत में दीपावली बहुत बड़ा एक विशिष्ट रूप से माना गया रहा है, अभी भी मान रहे हैं वही तिथि को, वही उत्सव को, लेकिन जब दीपावली के पहले दिन तक मन में बहुत आनंद, क्योंकि दीपावली आने वाले, जब उस दिन सुबह आ गया उस दिन से मन में दुख, क्यों आज दीपावली आ गई है, आज सुबह से मैं सोच रहा आज तो लास्ट दिन है, कल तक बहुत उत्साह था, फिर कथा होगा, लेकिन आज सुबह से थोड़ा मन दूसरी तरह लग रहा है, लेकिन महाराज उसके भी कुछ समाधान कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का अखंड प्रेम से यही सिद्धांत हुआ। अगले साल 18 मार्च से 24 मार्च फिर भागवत की कथा होगा, इसके विषय चुना गया भागवत के 10वां स्कंद, ये बहुत एक विशेष जगह है, समझने का बहुत जरूरत है। सो शिव महाराज कथा करेंगे,
हम लोग बहुत भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ। भगवान के महाराज की तबीयत ये सब ठीक ठाक रहें, महाराज फिर आके कथा करें। तो क्योंकि मैं तो कितने प्रोग्राम भगवान के नाम लेके करने का प्रयास कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसा सब आ जाते हैं, प्रोग्राम के बदलना पड़ता है, तारीख बदलना पड़ता है, व्यक्ति के बदलना पड़ता है, महाराज के बदले किसको दूसरे आएंगे, कोई नहीं मानेंगे, हम दूसरा किसी को यहाँ के लाके बैठाएंगे, सब चल जाएंगे पहले दिन। तो महाराज तो बहुत भागवत के माध्यम से बहुत साधक को घटनाएं भी बताया, मन में भी बहुत बातें आ जाती है, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। लेकिन एक आप क्योंकि इसमें इतने सज्जन नया नया आए हुए हैं, वो कभी भी आश्रम में प्रवेश नहीं किया, 50 साल 60 साल से दिल्ली में है, तो वही सज्जन के बारे में थोड़ा एक छोटी से थोड़ा श्री रामकृष्ण देव के बारे में बताना चाहता हूँ कि महाराज भी कहा ना, नरसिंह मेहता कैसे उनका पुत्र का देहांत होने के बाद भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचा भगवान मेरे को ज्यादा से ज्यादा साधना में प्रवेश करने के लिए भगवान ऐसा एक विधान दिया। आप सब लोग रामकृष्ण देव की जीवन के बारे में चर्चा करें किए हुए, नहीं तो इतना तक थोड़ी सुन लीजिए, बाद में अवसर होगा चर्चा करने के लिए कि उनका बहुत भक्त थे। उसके अंदर ये बंगला का बहुत प्रसिद्ध नाट्यकार गिरीश चंद्र घोष विश्व विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है, उनको भी बहुत कंप्लीट वृक्ष रूप से निकाला, वे रंगमंच में कुछ नया रूप दिया था, वो इतना बहुत उनकी नाटक यात्रा देखे श्री रामकृष्ण समाधिस्थ होते थे, चैतन्य लीला देखने के लिए मोर मोर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन दूसरी तरीका था, दुश्मन शब्द बहुत कम होता था उनके व्यवहार के लिए, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आके बाद में बताया, ऐसा महापुरुष के संस्पर्श में आ जाएंगे बाद में ही पता चलता, तो दो चार जो छोड़ा वही खराब काम भी कर लेते थे, इतना विश्वास बाद में जन्माया। लेकिन पहले जैसे आया बहुत कठिन कुछ था, लेकिन एक दिन श्री रामकृष्ण कथा के माध्यम में कहते थे, देखो सबका कुछ तो उद्धार का कुछ व्यवस्था है, लेकिन ऐसा घटी उसमें प्याज व रसुन रखा था कई दिन, वो उसकी गंध कभी भी नहीं जाएगा। यही सुन के मन में बहुत उनका शंका आया, प्रभु मेरा क्या किसी तरह उद्धार नहीं होगा। श्री रामकृष्ण कुछ तरह समझाया उसको, जाके आग ये बहुत से जला दो उसे चल जाएगा, लेकिन वो नहीं माना, मेरे के सांत्वना के लिए सब प्रभु कह रहे हैं, ये सच बात नहीं है, नहीं आपको ही कुछ उद्धार करना है के मेरे को। श्री रामकृष्ण क्या तुम सुबह शाम थोड़ा भगवान के नाम ले सकते हैं? अरे क्या कह रहे महाराज, सुबह क्या शाम, मेरा तो कब सुबह होते कब शाम तो पता नहीं है, मैं तो रात भर बैठ के लिखता हूँ, शराब पीते पीते कब सुबह हो जाते सो जाते थे, इन्हें दिन ना रात को मेरा ठीक नहीं है। तो महाराज श्री रामकृष्ण इतना कहा, आप सोने के पहले क्या एक बार भगवान के नाम कर सकते हैं? नहीं महाराज, मेरा ऐसा तो कई दिन सोते नहीं है, रात भर लिखते रहते हैं, और इतना मेरा मुकदमा है मामला है यही है, वो संभव नहीं है। सो अंत में श्री रामकृष्ण सब कितनी तरीका समझाया वो समझ नहीं पाया, महाराज जी कहा ठीक है जिम्मेवारी मेरे को दे दो, पारा फटा नहीं मेरे को दे दो, तुमको कुछ नहीं करना है। वो तो सुना बहुत सहज है, मेरा कुछ नहीं करना, प्रभु सब कर देंगे, वो मान लिया। लेकिन धीरे 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 पता चला कितना गुरु दायित्व वो सौंपाया श्री रामकृष्ण के पास में। ऐसा हो गया कोई चीज अपना नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ करने में सोच आता था मेरा तो करने का अधिकार नहीं है, प्रभु तो करेंगे। ऐसा हुआ उनका पुत्र भी, उनको तो स्त्री का भी तो मृत्यु हो गया था, एकमात्र पुत्र बचा था वो भी मर गए, लेकिन रो नहीं पाया, क्यों मेरा तो मालूम नहीं है प्रभु क्यों ऐसा घटना घटाया, क्या मेरा जरूर कुछ कल्याण के लिए किया, इसलिए वो रो नहीं पाया। सब भक्त लोग श्री रामकृष्ण गंगा जी का बहुत तारीफ करते थे, श्रद्धा करते थे, ब्रह्मवारी कहते थे। सब भक्त लोग एक दिन स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गिरीश घोष वहां है, महाराज श्री रामकृष्ण स्वयं कहा गिरीश जाके तुम स्नान करो, नहीं महाराज नहीं करूंगा। तो बहुत आश्चर्य, क्या सब तो जा रहे हैं? नहीं, वो कहा देखिए मैं इतना मेरा पापी जीवन है, मैं जाने में गंगा अपवित्र हो जाएगा, लेकिन श्री रामकृष्ण शरीर छोड़ने के बाद एक दिन सब भक्त लोग देख रहे हैं वो गंगा जी में नहाने के लिए जा रहे हैं। अरे आप सब, श्री रामकृष्ण कहा तुम नहीं गया अभी जा रहे हैं? वो गंभीर होकर कहा श्री रामकृष्ण ने मेरे जीवन के ऐसा कर दिया, मैं अभी जाके गंगा जी में, तो कितने लोग आके अपना अपना पाप छोड़ते हैं, मैं गंगा जी का पवित्र करने के लिए जा रहा हूं। इतना परिवर्तन। अंत में वो काशी में कुछ दिन रहे, काशी में अभी भी ये प्रथा है, सज्जन लोग सुबह उठ के गंगा जी में स्नान करके विश्वनाथ जी दर्शन करके वापस आते। जब उन लोग, उन सबको मालूम पड़ा गिरीश घोष है ठाकुर के परम भक्त, स्नान करके विश्वनाथ दर्शन करके सीधा गिरीश घोष के पास आ गए। उनके बहुत आश्चर्य हो गया, देखिए प्रभु का इससे अधिक महिमा, इससे अधिक अलौकिक क्या हो सकता है? मेरे तरीका पापी, इसका दर्शन के लिए संत लोग, विरक्त महात्मा, सर्वत्यागी सन्यासी स्नान करके गंगा जी में विश्वनाथ जी के दर्शन करके मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, इससे अधिक प्रभु का क्या महिमा हो सकता है? यही श्री रामकृष्ण का जीवन, कैसे उन्होंने एक गिरीश चंद्र घोष के परिवर्तन किया। इसी तरह बहुत कुछ घटनाएं हैं श्री रामकृष्ण की जीवनी में। इसीलिए अप्रैल 2 तारीख से 8 तारीख वचनामृत में भी एक सप्ताह होगा, लोग उन भी बहुत सुंदर भाषण देंगे, बहुत सज्जन व्यक्ति है, सुंदर साधु है, पवित्र साधु है, वो देहरादून में रहते हैं, स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज, उन्होंने आके 2 तारीख से 8 तारीख तक यहाँ करेंगे। आप सब लोग फिर उस समय भी आइए। फिर छोटी छोटी 2 घोषणा, एक 24 तारीख मंदिर में जप यज्ञ चलेगा, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, बहुत सब कह रहे हैं साधक लोग के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए उदयास्त जप यज्ञ, जब जितने समय बैठ सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा अपना अपने इष्ट देवता की अपना अपना मन की अनुसार जप कर सकते हैं, मंदिर में इतनी सुंदर वातावरण। और तो 2 तारीख के 8 तारीख कार्यक्रम बताया। 25 मार्च में अगले रविवार हम कई थे विदेश में भी सेंटर्स है, वहाँ शिकागो जाने वाले स्वामी ईशात्मानंद जी महाराज आएंगे, उन्होंने प्रवचन देंगे। अंत में फिर महाराज जी के सर्वाधिक हृदय से आप सब लोग तरफ से, आश्रम तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार महाराज, श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। अभी महाराज के लिए थोड़ा कुछ पुस्तक भेंट देंगे, उस पुस्तक भेंट देंगे, उस पुस्तक भेंट देंगे, उस पुस्तक भेंट देंगे, उस